जहां देह का दुनिया का कोई भान नहीं है,
जहां देह का दुनिया का कोई भान नहीं है,
कोई गम नहीं, हलचल
शांति। अमेरिका के एक कलाकार और नाटककार जॉन हॉर्ड पेन 1823 में उसने एक गीत लिखा था जो कि बहुत बहुत प्रसिद्ध हो गया था, और उस गीत के बोल थे, अंग्रेजी में वो गीत था, My pleasures and palaces, though we may roam, be it ever so humble, there is no place like home. चाहे हम कहीं पर भी घूमें, कितनी भी सुख सुविधाएं हो, कितनी भी महल माड़िया हो, परंतु घर जैसा और कोई स्थान नहीं. A charm from the skies seem to hello us there, which seek through the world is never met. Elsewhere, जो इतना पवित्र है, ये जहां पर आसमान का सौंदर्य है जो हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है. होम होम स्वीट स्वीट होम, देर इज नो प्लेस लाइक होम, देर इज नो प्लेस लाइक होम. घर वो घर और उसके जैसा और कोई घर नहीं. एन एग्जाइल फ्रॉम होम स्प्लेंडर डेजल्स इन वेन. Oh, give me my lovely thatched cottage again, the birds singing gaily that came at my call, and give me that peace of mind, the peace of mind, dearer than all. Home, home, sweet, sweet home, there is no place like home. वो घर जिसके बाहर जाते ही सब कुछ जैसे कि व्यर्थ है. मुझे मेरी वो झोपड़ी दे दो जहां पर पक्षी गुनगुनाते हैं, जहां पर मन की शांति है. होम 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 स्वीट होम. अभी अभी जो व्यक्तवाणी चली उसमें बाबा ने क्या कहा, एक मिनट में क्या करो, परम धाम में स्थित हो जाओ. और यह अभ्यास बहुत बहुत और बहुत आवश्यक है. तो आज हम उस घर की चर्चा करेंगे, उस परम धाम की, उस शांति धाम की. वहां क्या है और वहां क्या नहीं है, वो कैसा है, क्योंकि जिसको याद करना है उसको तो जानना चाहिए ना. कोई कहे लंदन को याद करो, लंदन को याद करो, अरे क्या याद करूं. याद तो तब करेंगे जब हमको पता हो वहां है क्या, वहां के रास्ते कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की संस्कृति क्या है, वहां का वायुमंडल जलवायु कैसी है. जब सब कुछ पता हो तो याद किया जाएगा. ऐसे ही कहे कोई याद करो, याद करो, और क्या याद करो. युगांडा को याद करो, क्या याद करो. जकार्ता को याद करो, अरे क्या याद करो. होनोलुलु को याद करो, पर होनोलुलु है कहां. और है क्या, जब तक ये पता नहीं तो कैसे याद किया जाएगा। तो परमधाम को याद करना है, सबसे पहले तो उसके सारे नाम पता चाहिए। तो परमधाम को क्या क्या कहा जाता है, कम से कम 30-40 नाम बताओ। वो है शांति धाम, वो है ब्रह्म लोक, ब्रह्मांड, ब्रह्म देश। ये सारे नाम की जानकारी इसलिए जरूरी है कि जब जब हम परमधाम की यात्रा करें और परमधाम में स्थित हो जाए, एक एक नाम लेकर उस नाम में स्थित होने का अभ्यास। मैं ब्रह्म लोक में हूं, मैं ब्रह्म देश में हूं, मैं ब्रह्मांड में हूं। वो निर्वाण धाम है, लैंड ऑफ साइलेंस, स्वीट साइलेंस होम है, वो साइलेंस का टॉवर है। मैं वाणी से परे उस धाम में हूं, बे आवाज चुप्पी, कोई आवाज नहीं, गहन मौन जहां पर है, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस जहां है। और वो मुक्ति धाम है, लैंड ऑफ लिबरेशन है, मोक्ष धाम है, कैवल्य धाम है, वो पार निर्वाण है। और वो जहां छठा तत्व है, वो सातवां आसमान जहां छठा तत्व है, द सिक्स्थ एलिमेंट, द सेवेंथ हेवन ऑफ डिलाइट। और वो आत्मा और परमात्माओं का घर है, निवास स्थान है, वो मूल वतन है, वो बेहद का घर है, वो रुद्र धाम है, वो निराकारी देश है, निराकारी गांव है, वो मणियों का आगार है, वो शिवालय है, वो शिवपुरी है, वो सोल वर्ल्ड है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, वो ऊंचे ऊंचा धाम है, वो पावन धाम है, वो शक्ति धाम है, वो पवित्र धाम है, बोल दिया, वो पार ब्रह्म, वो। और परमधाम को क्या क्या कहते हैं, दूर देश है, बाप दूर देश से आया है, और रेस्ट हाउस है आत्माओं का, और बॉडीलेस वर्ल्ड, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, और थर्ड फ्लोर है वो, ये फर्स्ट फ्लोर, वो सेकंड फ्लोर, और वो थर्ड फ्लोर, और मूल वतन बोल दिया, वॉइसलेस वर्ल्ड, टावर ऑफ पीस है, और विश्राम ग्रह है, वो आत्माओं के विश्राम का स्थान है, और वो निजात, जहां पर आत्माएं मुक्त स्वरूप में रहती है, और चार्जिंग हाउस है, और एनर्जी हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस भी कह सकते हैं उसको, पावर हाउस भी कह सकते हैं, और भगवान का घर, और हमारा भी घर, और क्या है वो, सुप्रीम अबोर्ड, इंग्लिश शब्द, रूहों की दुनिया, मीठा धाम, ये सारे शब्द मुरलियों में आए हुए हैं। सर्वोच्च चोटी वो क्या है, बाबा ने तो हमको कहा आज तुम सबसे ऊंची चोटी हो, और वानप्रस्थ धाम वो क्या है, वानप्रस्थ, तुम्हें वानप्रस्थ में चलना है, तो वो वानप्रस्थ धाम है, वो सच्चा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, और फाइनल डेस्टिनेशन है, और हाईएस्ट हेवन भी कहते हैं उसको, और होलीएस्ट पैलेस, तो ये सारे उसके अलग अलग नाम है। तो आत्माओं का झाड़, ऊर्ध्वमूलम अदश्याकम, अश्वत्थाम प्राहुरे वयम्। 15वां अध्याय पहला श्लोक गीता, हे अर्जुन ये उल्टा झाड़ है, इसको समझ। उर्ध्वमूलम अदश्याकम अश्वत्थाम प्राहुरे वयम्, ये ऐसा आत्माओं का उल्टा झाड़ है, तो वो परमधाम है उल्टा झाड़, तो आत्माओं का झाड़ सिजरा, बाबा कहते हैं सिजरा जियोलॉजिकल ट्री, बीज का स्थान, और तो ये सारे उसके नाम है। अभी प्रश्न ये है कि इस परमधाम को कैसे याद किया जाए, और परमधाम में जब हम स्थित होते हैं तो क्या क्या किया जाए, और ये परमधाम है कैसा। कई बार हमने वो परमधाम की ड्रिल भी बताई थी कि जिसमें परमधाम में पहले नाम याद करना, फिर उसमें अपने स्वरूप को याद करना, फिर शिव बाबा के स्वरूप को याद करना, फिर उसकी किरणें मुझ में आ रही है, फिर एक स्वरूप है कंबाइंड स्वरूप को याद करना, फिर साक्षी स्थिति को याद करना, वो 7 ड्रिल है परमधाम की, वो तो है ही है। पर आज हम चर्चा करेंगे ये जो घर है, ये जो धाम है, इसकी क्या क्या विशेषता है, ये कैसा है, इसमें क्या क्या है, और क्या क्या है से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, क्योंकि ये हमारा घर है और इस घर में हमको लंबा समय तक स्थित रहना है, और इसी घर में हम जब स्थित है तब ज्वालामुखी योग की अवस्था में है, और इसी घर में जब है हम है सबसे पावरफुल योग है, और इसी घर में जब हम है तब सबसे तेजी से विकर्म विनाश होते हैं। तो सबसे पावरफुल योग परमधाम का योग है, तो सबसे पावरफुल स्थान संसार का ये है, इससे अधिक शक्तिशाली स्थान कोई है क्या, इससे बड़ा कोई तीर्थ संसार में नहीं है। सुप्रीम चार्जिंग स्टेशन है परमधाम, तो जहां हमें स्थित रहना है वहां पहुंचने के बाद तो शक्तिशाली अवस्था यह है कि कोई संकल्प नहीं, परंतु मन की ऐसी कोई अवस्था होती नहीं जिसमें कोई संकल्प नहीं है, मन की ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है कि जिसमें। जगदीश भाई जी ने एक जगह उदाहरण दिया है कि एक साधु से वो मिले जिसने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो कहता है मेरा कोई विचार ही नहीं चलते, मैं ऐसी समाधि की अवस्था में चले जाता हूं, पर मेरा कोई विचार नहीं चलता ये भी तो विचार है, मेरा कोई भी विचार नहीं है ये भी एक विचार है। वो तो यही सोच रहा है कि मेरा कोई संकल्प नहीं है, मैं निरसंकल्प हूं, ये भी तो विचार है, ये भी तो एक संकल्प है कि मैं निरसंकल्प हूं। तो हमारा योग डेड विचारों को डेड कर देना, नील कर देना, वाइट कर देना नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स पर वो इतने कम हो जाए, इवन परमधाम में भी थॉट्स है, और धीरे 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 वो अवस्था आ जाती कि बहुत, एकदम वो अवस्था नहीं आएगी जिसमें एकदम ही निरसंकल्प हो जाए और परमधाम में स्थित हो जाए, वो अवस्था तो एकदम डेड स्टेज है, मृत अवस्था है, वो नहीं हो सकती। जब तक व्यक्ति है तब तक विचार चलेंगे, संकल्प आते रहेंगे, केवल जब हम परमधाम में है तब हमारे विचार इतने शांत हो जाए। और हमारा योग है क्या, यही तो योग है, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, परमात्मा की संतान हूं, पर वो करते करते शब्दों से धीरे धीरे शब्द रहित स्थिति में हम जाते हैं, वाचा से मौन में उतरते हैं, टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हैं, परंतु हमारा ये जो साइलेंस है उस तरह का डेड साइलेंस नहीं है, बहुत स्वीट साइलेंस है, बहुत अनुभव वाला साइलेंस है, उसमें संकल्प तो है पर वो संकल्प इतने शांत हो गए हैं, और इस दुनिया के संकल्प नहीं है, इस दुनिया के विचार नहीं है, कोई और दुनिया के विचार है। तीसरा कंबाइंड स्वरूप क्या बताया था, फरिश्ता अर्थात अव्यक्त स्वरूप में स्थित, अव्यक्त पाठधारी, अव्यक्त स्थितिधारी, मेरे समान तुम अव्यक्त पाठधारी, मेरे समान तुम अव्यक्त रूपधारी बनो, ब्रह्मा बाप के साथ रहो, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी। यह अवस्था चेतना की, तो यह भी हम देखेंगे कि उस परम धाम में जब हम स्थित होते हैं और जहां हमें जाना है, और यहां हमको स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया हो रहा है, नॉस्टैल्जिया अंग्रेजी शब्द है होमसिकनेस, अब घर की याद आने लगी है, पहले तो घर में थे, सोचा कब तक घर में रहे, चलो पिकनिक करने जाते हैं, खेल के आते हैं थोड़ा, और खेल करने गए एक दिन, दो दिन, सात दिन, पंद्रह दिन, और फिर छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। माँ बाप कहते हैं और थोड़ा दूसरी जगह घूम के आते हैं, वो कहते हैं नहीं अब मुझे घर जाना है बस, अब थक गए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर घर की जो याद आती है, वो जो होम सिकनेस होता है कि मुझे अब घर याद आ रहा है, वो जो स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया होता है, उसकी स्थिति अब है कि संसार को बहुत देख लिया, सतयुग देख लिया, त्रेता देख लिया, द्वापर देख लिया, कलयुग देख लिया, यहां के सारे भोग विलास सब कुछ भोग लिए और आत्मा रिक्त हो गई। अब उसको याद आ रही है उस घर की, उस धाम की। ये जो कवि ने लिखा, ये भी किस अर्थों से लिखा होगा और कौन सी आत्मा होगी, शायद यही की कोई आत्मा होगी। 1823 में लिखा, होम स्वीट होम देर इज नो प्लेस लाइक होम। याद तो उसे उसी घर की है पर उसका पता नहीं है, इसलिए यहां के घर की बातें लिख रहा है, पर वास्तव में लिख तो वहीं के लिए रहा है कि उसके जैसा कोई घर नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी खाली, कंगाल, निर्धन, विपन्न बन गई है। अब संपन्नता की प्यास है, अब फिर से उसे इच्छा है कि वहीं जाऊं जहां पर भरपूर थी, क्योंकि आत्मा की तृप्ति संपन्नता में है, भरने में, और वहां जाकर ही आत्मा भरती है। संसार का कोई प्रेम, संसार की कोई प्राप्ति, संसार का कोई सुख, संसार की कोई सुविधा, संसार का कोई भी यहां की बातें, कोई संबंध, कुछ भी आत्मा को भर नहीं सकता। सबने आत्मा को खाली किया है। आत्मा तो जब अपने स्वस्वरूप में संपूर्ण रीति से स्थित होती है तो ही वो शक्तिशाली है। चार चीजें, स्वधर्म, स्वरूप, स्वदेश और स्वपिता, जब इनके साथ आत्मा रहती है तब ही सुखी है, बाकी दुखी है। तो वो जो परम धाम है, वो जो मूल वतन है, वो जो सबसे बड़ा धाम है, सबसे ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो हमारा घर है, वहां से हम नीचे उतरे हैं। उसके तुलना में उसके लिए ऐसी प्यास कि उसके आगे नीचे भी उतरने की इच्छा नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कहीं आना ही नहीं है, बस ऊपर ही टंगे रहना है। ये वाली फांसी उनकी है, काशी कलवट, हमारी है अविनाशी कलवट। तो यहां परमधाम कलवट, मूल वतन कलवट, यहां पर स्थित रहना सबसे ऊंचे धाम में, तो वहां क्या क्या नहीं है, अब उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये सारी पॉइंट्स और इससे भी ज्यादा विचार करके आप सोच सकते हैं। सबसे पहले परम धाम जाते ही यहां कोई आवाज नहीं है। मैं कहां आया हूं, परम धाम में टिकना क्यों इतना मुश्किल है, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि परम धाम में जो बातें हैं, ये परम धाम है, यहां और ये धरती है, हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर इस चीजों की कोई, यहां की कोई भी बातें नहीं है, और हम इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए इस दुनिया से सीधा उस दुनिया में जाना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है कल्चर शॉक। कल्चर शॉक क्या होता है, यदि कोई भारत में रहने वाले अमेरिका में सेटल होने जा रहे हैं, ठीक है, भारत के किसी गांव में, देहात में पला बड़ा, जिसने खेत देखी है, गाय बैल बकरियां देखी है, भेड़ों को चराया है, और वो व्यक्ति सोचता है उसको अवसर मिल गया अमेरिका, और वहां जाते ही शॉक, क्योंकि कुछ भी सूट नहीं हो रहा है, ना वायुमंडल सूट हो रहा है, ना भोजन, भूखा मरता है रोज, उसको वो पसंद ही नहीं है। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, लंदन गए तो कल्चर शॉक, वहां पे एकदम जैसे शिष्टाचार, कम खाना है, ज्यादा खाना नहीं। अब उनको भूख लगती थी हमेशा, अब सबके सामने ज्यादा कैसे खाए, थोड़ा सा दिया है उतना ही खाओ, इतना सा खाए, इतना सा चावल, इतनी सी रोटी। अब भारत के लोगों को तो भरपेट खाने की आदत है, पर वहां शिष्टाचार, तो उन्होंने लिखा है कि रोज ही मैं भूखा रहता था, क्योंकि वो गेस्ट, पेइंग गेस्ट थे एक घर में, तो वो जो जितना देते थे और उनके, वो भी उतना ही खाते थे, वो ब्रेड और उसमें थोड़ा सा बटर, इससे क्या होता है, दो ब्रेड से तो कुछ भी नहीं होता है, पेट तो खाली रहता है। तो कल्चर शॉक, वहां की संस्कृति, वहां का तापमान, वहां की जलवायु, वहां का सब कुछ, कुछ भी सूट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं कल्चर शॉक। वहां का पहनावा, सब कुछ, सब अलग अलग है। तो पानी भी सूट नहीं होता है, कुछ भी सूट नहीं होता है। कोई कोई वापस आ जाते हैं कि बस ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे पल्ले तो नहीं पड़ता है, ये छोड़ो यहाँ की बातें, तो वो छोड़ के भाग के भी आ जाते हैं। कोई चाहे वो बहुत अच्छा था पर ये नहीं चाहिए हमको, भारत ही ठीक है, तो अपना घर अच्छा है। तो होम स्वीट होम। उसी तरह हम इस दुनिया से उस दुनिया में जब एंट्री करते हैं तो यहाँ ज्यादा समय क्यों नहीं टिक पाते, क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाते शायद यहाँ पर, क्योंकि हमको आदत है यहाँ की और हम पहुंचते हैं उस दुनिया में जहां कुछ और ही चीजें है, यहाँ का कुछ है ही नहीं। वहां वहां बहुत सारी चीजें है, 52 पॉइंट्स निकालिए। हाँ, उसमें एडिशन करना। तो कल्चर शॉक। और एक दूसरी चीज होती है, एक मेडिकल में एक सिंड्रोम कहा गया, जेरुसलम सिंड्रोम। जब व्यक्ति तीर्थ स्थान पर जाता है, जैसे देखा गया जब क्रिश्चियन का जो तीर्थ स्थान है जेरुसलम है जहां जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो वहां जाते हैं, वहां से जाने के बाद कुछ कुछ होने लगता है, उसी दुनिया में रहते हैं। वहां से आ गए भारत में या भारत से गए वहां पर क्रिश्चियन, पर वहां अभी भी उसी नशे में है कि हम वही है, उसको कहते हैं जेरुसलम सिंड्रोम। जैसे मधुबन सिंड्रोम, मधुबन में आए, मधुबन में एक महीना सेवा की, यहां से जाने के बाद में भी मधुबन खींचते रहता है, मधुबन ही याद आते रहता है। तो हम एक नया सिंड्रोम बना सकते हैं, मधुबन सिंड्रोम, कि मधुबन की ही यादें, फिर धीरे धीरे उस दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहली चीज है आवाज ही नहीं है। हमको आदत किसकी है, सुबह से उठते ही आ आउच, बात करने वाला कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए बात करने वाला। हमको बोलने की इतनी आदत है और सीधा हम ये कहते हैं परमधाम को एक मिनट में याद करो, बहुत 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 जरूरी है, नाजुक समय आने वाला है, और हम भी सीधा परमधाम में याद करते। तो यहां हमको बेचैनी होती है क्योंकि आवाज की आदत है, बेआवाज की दुनिया में पहुंच गए, फिर आवाज खींचता है। आवाज में पता नहीं कौन सी कशिश है, आवाज से क्या वैराग आ सकता है, बाकी चीजों से वैराग तो है पर आवाज से वैराग की इच्छा ही ना हो आवाज करने। बहरे लोगों की तो मजबूरी है, बहरे लोगों के लिए नहीं आवाज। तो पर बोलना छोड़ देने से कुछ नहीं होता है, आत्मा आत्मा ये तो केवल मुख, तो केवल कमान है जहां से तीर निकलते हैं, कमान जैसा है ना ओठ, जहां से तीर छोड़े जाते हैं। तो वो तो केवल यंत्र है, बोलने वाला तो कोई और बैठा है यहां। ये बंद हो जाए पर ये बंद होगा जरूरी नहीं है, आत्मा तो बोलती रहती है कुछ ना कुछ, इंटरनल चिट चैट, इंटरनल चैटर। उनसे पूछ लेना क्या बोला बाद में। तो सबसे पहली चीज जो यहां पर नहीं है वो है आवाज ही नहीं है, वहां वो मौन है, सुप्रीम साइलेंस है, बेआवाज की दुनिया, निस्तब्धता और निश्शब्दता है, वहां निस्तब्ध है, सब कुछ ठहर चुका है, निश्शब्द है, कोई शब्द वहां नहीं, स्पीचलेस वर्डलेस, ऐसी वो दुनिया है। एक दूसरा, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है, एक्शन कोई एक्शन नहीं है, एक्शन इधर है और हमको हिलने डुलने की इतनी आदत है, और परम धाम में तो एक्शन ही नहीं है, आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट एक जगह स्थित है, इसके लिए वहां स्थित होना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए गिरते हैं नीचे, हिलते डुलते हैं ना, इसलिए तो नीचे गिरते हैं। तो वहां पर आवाज नहीं, तो अभ्यास करना है आवाज से परे रहने की। वहां पर एक्टिविटी नहीं है तो मन को स्थिर करने की का अभ्यास करना है, एकदम स्थिर हो जाए, दृढ़ संकल्प निर्संकल्प जो भी कहो उसमें स्थिर हो जाना। ज्ञानामृत में एक बार आर्टिकल आया था, एक जिसमें लिखा था व्यक्ति बिना सोचे कुछ करता है फिर पश्चाताप करता है, या तो सोचते ही रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है और करता ही नहीं, ये दो अवस्था है, बीच में ठहर जाए आत्मा दृढ़ संकल्प में स्थिर हो जाए, ये अवस्था मिसिंग है, जिसमें ऐसा भी नहीं कि बस प्लानिंग ही कर रहे और वो कुछ नहीं रहा है। तो परम धाम में एक्टिविटी एक्शन ये सब नहीं, और हमको आदत किसकी है, एक्टिविटी और एक्शन की, इसलिए वहां स्थित होना मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर ही स्थित होते समय अपनी एक्टिविटीज को कम करना है, मन की एक्टिविटीज को, मन जो हिलता डुलता है उसको बीच बीच में, केवल अमृत वेला स्थिर कर लिया और दिन भर छोड़ दिया तो नहीं होगा। अति के समय अंत का अभ्यास करो। अव्यक्त महावाक्य है, अति के समय अर्थात जब बहुत बिजी है, अति अर्थात यहां बिजी, जब दिनचर्या में अति में हो तब अंत का अभ्यास करो। अंत है मौन। तो ये दो चीज, तीसरा वहां कोई शरीर नहीं है और हम रहते हैं शरीर में, हम रहते हैं शरीर की दुनिया में, वहां देह ना है ना देह का भान, गीते ना, तो वहां हम देह, वहां देह है ही नहीं, वहां शरीर ही नहीं है। पर ये कितना अच्छा अभ्यास है कि मैं आत्मा निराकार देह रहित हूं, शरीर है ही नहीं, अब मेरा शरीर ही नहीं है तो शरीर के ये जो संबंध और ये जो विस्तार है मेरा, इनसे कोई लेना देना नहीं, ये मेरे ही नहीं है। कौन माँ बाप, किस जन्म के, इतने जन्म मैं ले रहा हूं, ये देखना है, ऊपर से देखना है अपने 84 शरीरों को, नीचे 84 पुतले, ये मेरे शरीर है, उसमें से आधा देवी देवता, कभी देव कभी देवी, कभी देव कभी देवी, कभी देव कभी देवी, और ये इधर स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष, ये मेरे 84 पुतले देखना है, और ऐसी दृष्टि देना है कि सब भस्मीभूत खत्म हो गए। अब जब देह ही खत्म हो गए तो कौन किसके माँ बाप और कौन किसका क्या, मैं आत्मा सबसे परे हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं, एकदम न्यूट्रल ऊपर हूं, और ये तो मैं नीचे आऊंगी तो ये शरीर धारण करूंगी, शरीर से डिटैच होने के ये सारे अभ्यास है, परमधाम में स्थित रहना। तो परमधाम में तीसरा कोई शरीर नहीं है, फिर वहां कोई भोग नहीं है, आत्मा जैसे ही शरीर में आती है भोगना चालू हो जाता है, भोगना अर्थात दुख नहीं, भोग अर्थात इंडल्जेंस, भोगना, सुखों को भोगना, दुखों को भोगना, ये सारी चीजें वहां ही नहीं, जैसे सतयुग में आ गई वहां से चालू हो गया सब कुछ, कुछ ना कुछ सुख तो भोग रही है ना सतयुग में, ये वो अवस्था है कि जहां भोग से परे है, अभोक्ता है आत्मा, तो मैं वो अभोक्ता आत्मा हूं, जैसे बाबा कहते मैं अभोक्ता हूं, असोचता करता हूं, वैसे मैं भी अभोक्ता हूं सबसे परे। तो ये जो अभी वर्तमान के भोगों ने जकड़ा हुआ है उनसे उनकी हमारी जो उनकी जो हमारे ऊपर पकड़ है वो ढीली होगी, हमारी जो उनमें आसक्ति है वो कम होगी, तो मैं आत्मा भोग से भी परे हूं तीसरा। दूसरा अगला, परमधाम में कोई बैरियर नहीं है, आत्मा कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी विघ्न, कोई भी जो संसार में यहां जो कुछ है वो वहां कुछ भी नहीं है, इस तरह के ऑब्स्टेकल, इस तरह के बैरियर, इस तरह के रुकावटें वो कुछ नहीं है, आत्मा मुक्त है वहां पर। फिर कोई चक्र नहीं है वहां पर किसी भी प्रकार के, नीचे आओ तो सारे चक्र ही चक्र में आत्मा फंसी रहती है, आत्मा चक्रों से परे है, मैं सभी चक्रों से परे हूं, व्यर्थ चक्र, विकार के चक्र, जितने भी चक्र है, जन्म मरण के चक्र, दिन रात का चक्र, ये सब कुछ है ही नहीं वहां, मैं उस चक्र मतलब इस दुनिया से ऊपर हूं, उस दुनिया में यहां रहने का अभ्यास करना, यहां से पावर भरेगी और फिर जब नीचे आएंगे तो स्थिति उपराम रहेगी, नहीं तो उपराम कैसी रहेगी स्थिति, ये तो पूरा खींच लेता है अपनी तरफ, व्यक्त भाव में आ जाते हैं। तो वहां पर कोई चक्र नहीं, फिर कोई कलर नहीं है वहां पर, सी फॉर कलर्स, परमधाम में कौन सा रंग है, ये लाल जो इस दुनिया के रंग है वो लाल, फिर कौन सा लाल, सुनहरा, कौन सा इस दुनिया का सुनहरा, उस संसार उस परमधाम में जो रंग है वो तो वहां जाके ही पता चलेगा क्या है, हम यहां बैठकर वहां की तुलना नहीं कर सकते, वो कोई रंग यहां के रंग है, ये तो ये हमने बनाए हुए भौतिक रंग, यहां के रंग ही नहीं है वो, रंगहीन, पर जो हम कहते लाल प्रकाश की दुनिया, कलरलेस है क्या है वो, जो भी है गोल्डन रेड कलर या जो भी कहो, वो कौन देख के आया बिना शरीर के, परम धाम में तो नहीं जाती है संदेशी, जा सकती है, की जाती नहीं, ना वो अभ्यास है, योग के प्रयोग, कुछ आता कुछ नहीं है कहीं से, ना कोई कोई जाता है ना कोई आता है। तो परम धाम में कोई रंग नहीं है, हाँ इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, वहां जो रंग होगा वो दूसरी बात है, पर रंग इस दुनिया के कोई रंग वहां का नहीं है, तो वो रंग रहित दुनिया है एक रीति से देख, वो मनुष्य मन की रचना है। फिर वहां कोई छत नहीं है, वहां कोई फ्लोर नहीं है, वहां कोई दीवार नहीं है, वहां कोई खिड़की नहीं है, और वहां कोई दरवाजे नहीं है, वहां कोई वेंटिलेशन है। ये सारे संकल्प करने परम धाम में देख लेना, यहां तो कोई दीवार भी नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई सीलिंग नहीं, कोई फ्लोर नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। तो मैं उस स्थान पर हूं जहां पर ये सारी कोई चीजें नहीं, कोई पार्टीशन नहीं बीच में, कोई पार्टीशन नहीं। हाँ पार्टीशन वो अलग प्रकार का है जो बाबा कहते अलग अलग सेक्शंस, पर वो सेक्शन कोई ऐसे सेक्शन नहीं है दीवार वाले, ये आपका ये हमारा ये भारत वो ऐसा नहीं है। फिर वहां कोई दिशा नहीं है, यह है दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, परमधाम में कोई दिशा है क्या? ऐसा कोई दिशा वहां नहीं है। परमधाम में कोई गंदगी नहीं है, नो डर्ट। परमधाम में कोई स्वप्न नहीं है, या स्वप्न देख रही है आत्मा वहां बैठ के देख रही है क्या? कोई स्वप्न नहीं परमधाम में, किसी भी प्रकार का कोई स्वप्न नहीं। स्वप्न तो यहां देखते हैं हम, ये है स्वप्नों की दुनिया। फिर उसके बाद में परमधाम में कोई इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस है क्या आत्मा को? कुछ नहीं, वो इमोशन रहित है। तो ये अभ्यास उनके लिए बहुत अच्छा है जो ज्यादा ही सेंसिटिव है, हर बात बात में दुखी होते, नाराज होते, अपसेट होते, फीलिंग देवी टच मी नॉट, ये सारी चीजें जो है वो फीलिंग्स वहां है ही नहीं, फीलिंग से परे, इमोशन से परे, फीलिंग प्रूफ इमोशन प्रूफ, मैं आत्मा परम धाम में स्थित हूं जहां कोई फीलिंग्स नहीं है। फिर है फॉर्म, वहां कोई आकार नहीं है किसी भी, मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं है इस तरह से जैसे ये शरीर का आकार है, वहां कोई आकार नहीं है। फिर वहां कोई जेंडर नहीं है, ये स्त्री ये पुरुष, ये स्त्रियों का सेक्शन, ये भाइयों का सेक्शन परम धाम का, बाजू में भाई बैठेंगे, इधर भाई बैठेंगे, इधर पुरुष बहने बैठेंगी, ऐसा है क्या? या माता को इधर से आके बैठ जाए तो भाई कहेंगे अरे चलो माता उधर चलो। तो सास बहू की आत्मा एक ही है, अच्छा ठीक है। तो सारी आत्माएं परम धाम में, एक माता आई थी जो की 40 साल से ज्ञान में अभी चलती है, तो वो उसका एक ही दुख था बस, कुछ दिखता नहीं, रोज योग करती पर दिखता कुछ भी नहीं। मैं बोला देखना है ही नहीं। बोले कुछ भी नहीं दिखता, बाकी सबको दिखता है, मेरा तो योगी नहीं लगता, मुझे कुछ भी दिखता नहीं, क्या देखना है? वो परम धाम भी नहीं दिखता, सूक्ष्म वतन भी नहीं दिखता, दिखता ही नहीं, बस एक ही एक चीज रट रही थी, एक ही एक चीज, इतने सालों से योग कर रही हूं पर दिखता कुछ भी नहीं। तो फिर हमने उसको समझाया कि देखना ही नहीं। तो वहां पर कोई जेंडर नहीं, आत्मा निर्लिंग है, आत्मा में स्त्री पुरुष ऐसा कुछ भाव वहां नहीं है। फिर उसके बाद में वहां पर कोई भी हिसाब किताब नहीं है, यह है मैं आत्मा परम धाम में हूं, मेरे सारे हिसाब किताब चुकतू हो चुके। और हिसाब किताब चुकतू होने की निशानी हल्कापन, हिसाब किताब जिस एक कड़ी, एक आत्मा है जिससे कड़े हिसाब किताब है, जैसे ही उस आत्मा से हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगी, वो आत्मा अपने आप हमसे दूर चली जाएगी। अगर बहुत दुख है, दूर इन द सेंस फिजिकली दूर की बात नहीं कर रहे हम, उससे मुक्त हो जाएंगे उसके प्रभाव से। अब ये एक आत्मा है जो रोज प्रभावित करती है, कुछ ना कुछ करती रहती है, तो जब तक हिसाब किताब है तब होगा। एक डिपार्टमेंट में 20 लोग है, कुछ ना कुछ चालू रहता है, पर जैसे जैसे उस आत्मा के उन 21 लोगों के साथ 19 लोगों के साथ जो हिसाब है पूरे होंगे, अपने आप पाठ पूरा हो जाएगा, वो कहीं 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 चले जाएंगे। इसके लिए हिसाब किताब वहां नहीं है। उसके बाद में जैसे उस गीत है, ना सुख दुख का कोई भ्रम है, जाना है हमें अपने परम धाम, वहां सुख दुख का कोई भ्रम नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है वहां पर, सुख भी एक इल्यूजन है, दुख भी एक इल्यूजन है, भ्रम है एक, तो उससे परे वहां कोई इमेजिनेशन है क्या? कल्पना कि वहां बैठ के हम कल्पनाएं कर रहे हैं, अभी सतयुग जाना है, फिर नीचे उतरूंगा, फिर दुख चालू होगा, फिर हाय रे मेरा भाग्य, दुख ही दुख, और फिर वाह रे मेरा भाग्य भगवान है, कोई इमेजिनेशन नहीं। फिर उसके बाद में वहां कोई यात्रा नहीं है, परम धाम के अंदर आत्मा जहां है वही स्थित है, या घूमती रहती है गोल 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 गोल, टूर परम धाम टूर, इधर जाके देखो वहां जाके देखो, कोई यात्रा नहीं है। फिर वहां कोई प्रकाश है या नहीं है? परम धाम में प्रकाश है क्या? वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकाशित स्थान है। न तद भासे ते सूर्य न शशंको न पावक, वहां पे यहां का सूरज, यहां का चंद्रमा और यहां के तारे प्रकाशित नहीं करते उसको, वो किसी का मोहताज नहीं है परम धाम, वो अपने आप में स्थित है, वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं ही प्रकाशमान है। और वो जो प्रकाश है वो इस यहां का प्रकाश वहां नहीं है, जैसे यहां की कलर वहां नहीं है, वहां का प्रकाश वहां पर प्रकाश भी नहीं है। हम ये जो लाइट ट्यूबलाइट जला के बैठे ये प्रकाश है क्या वहां? नहीं। तो उस प्रकाश में रहने की भी आदत चाहिए, क्योंकि हमको उसका साउंड सिस्टम एंड लाइटिंग सिस्टम ही अलग है, कुछ अलौकिक है। तो वो फिर वहां पर कोई लोड नहीं है, आत्मा पर कोई बोझ नहीं है, आत्मा पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। फिर वहां पर कोई भाषा नहीं है, या है भाषा? आत्मा बात करती है, चलो चलो तुम्हारी बारी आ रही है, नीचे उतरने की, निकलो तुम, मेरा तो टाइम है अभी मैं बाद में आऊंगी, तुम जाओ पहले। हाँ, ये जा क्यों नहीं रहा, भेजो इसको धक्का देके। कोई आत्मा जा ही नहीं रही नीचे, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा टाइम अभी, मुझे थोड़ा आराम करना है और मेरा मूड नहीं है। वार्तालाप होती है कुछ आत्माओं में ऊपर, कुछ नहीं, जिसका जब टाइम आ जाता है अपने आप नीचे उतर के आती है, वहां कोई भाषा नहीं है। फिर उसके बाद में वहां कोई स्मृतियां नहीं है, कोई भी स्मृतियां नहीं है, कोई यादें, कोई मेमोरीज नहीं है। फिर वहां कोई मेजर नहीं है, मेजर अर्थात माप, वो कुछ नहीं है। फिर वहां कोई नाम नहीं है, ये आत्माओं को पता है हम परम धाम में है और उसके इतने नाम है जितने हमने अभी गिनाए, ये आत्मा गिनती रहती है कि हम यहां पर है, या बोलती है अरे तुम टॉम डिक हैरी चलो जाओ तुम्हारा टाइम आ गया। आत्माओं के कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो शरीर पर पड़ता है, एक ही व्यक्ति है जिसके आत्मा पर नाम है, कौन? वो है भगवान। फिर वहां पर कोई भी सुगंध या गंध नहीं है, वो यहां है बेगंध वहां पे कोई गंध नहीं है। फिर उसके बाद में वहां किसी का कोई पार्ट नहीं है सच, यहां पार्ट है रंगमंच पर, वहां कोई पार्ट नहीं है। फिर पार्टीशन बोल दिया, यहां कोई, वहां कोई पार्टीशन नहीं है। फिर वहां कोई संबंध नहीं है किसी के साथ, नो रिलेशनशिप्स, आत्माओं के कोई संबंध नहीं है, आत्मा बस अपने आप में स्थित है। वहां पे कोई रोड, सड़क, गली, गली आ रहा क्या है, इधर से उधर जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, ये सब कुछ नहीं है। वहां स्पेस, स्पेस नहीं है, स्पेसलेसनेस है वहां पर, कोई स्पेस नहीं है। वहां पर नींद क्या है? वहां नींद है ही नहीं, वहां सूरज नहीं है, वहां चांद नहीं है, वहां सितारे नहीं है, वहां कोई ग्रह नहीं है। यहां है कोई ग्रह? कोई भी ग्रह नहीं है वहां। वहां कोई सपोर्ट आत्मा को लटकाने के लिए, टंगाने के लिए, फूटिंग, हाँ, कोई रस्सी तार लटकने के लिए वहां, क्योंकि तो कैसे लटकेगी, तो वहां कुछ नहीं है, बिना उसके लटकी हुई है निराधार। कोई संस्कार? इस संसार के कोई संस्कार नहीं, हाँ उसके अनादि संस्कार जरूर होंगे, पर यहां के कोई संस्कार वहां नहीं है, और होंगे भी तो वो मर जाए। फिर वहां टाइम, अरे द्वापर पूरा हो गया, टाइम मेरा आ गया है, घड़ी है पर काटा नहीं है। वहां कोई समय नहीं है, समयातीत स्थान है, समय से परे है। और जब हम परम धाम में स्थित हो जाए तो वो अवस्था आ जाए, नहीं तो ये नहीं कि अभी योग का टाइम हो गया चलो, वो अवस्था ऐसी है कि कोई स्थित हो जाए तो समय ही भूल जाए उसको, वो रियल योग होगा। फिर वहां पे कोई विचार
नहीं,
थॉट नो थॉट। वहां कोई टेस्ट
नहीं,
कोई टेस्ट। वहां कोई टच
नहीं,
नहीं। वहां कोई अपर लोअर, ये ऊंचा ये नीचा
नहीं,
नहीं। वहां कोई विकार नहीं, वहां कोई व्यक्त भाव नहीं, वहां कोई कमजोरी नहीं, वहां कोई युद्ध नहीं, वहां कोई मूवमेंट, हिलना, एक कहा एक्टिविटी, एक है मूवमेंट मोशन नहीं। तो ये सारी इतनी सारी बातें और बहुत सारी हो सकती है, वह भूख, हाँ वहां कुछ खाने की हंगर प्यास भूख कुछ नहीं है। तो जिसको बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, दिन रात भूख भूख करते रहता है, खाऊं खाऊं, वो ज्यादा से ज्यादा परम धाम में स्थित हो जाए, क्योंकि आत्मा वहां भोगता है, अभोक्ता में वैसे आ गया वो, कि वहां ना तो भूख है ना प्यास है। देह के जो धर्म बताया है बाबा ने, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, तो देह के एक तो है स्थूल धर्म, दूसरे इस देह के दूसरे धर्म है कौन से, भूख प्यास निद्रा, ये भी धर्म है, इनसे भी परे, तो उस परम धाम में लंबा समय स्थित होना, उस परम धाम को जानना, और जान वही सकता है जो वहां रहता है। खाली पढ़ने से नहीं होता चलेगा, जैसे उस दिन वो कहानी बताई थी कि वो एक प्राणी को देख के आता है, एक कहता है वो लाल है, दूसरा कहता है पीला है, हरा है, नीला है, सारे मित्र आपस में झगड़ते हैं वो प्राणी है कौन सा, वो कहते चलो जाकर देखते, जाकर देखते झाड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, उसको पूछते बताओ वो प्राणी को कैसे रंग का है, वो कहता है आपने जितने बताए आप सब गलत सही हो, वो लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है, हरा भी है, सफेद भी है, और कभी कभी तो रंगहीन भी है, वो गिरगिट है। तो जो व्यक्ति झाड़ के पास बैठेगा उसी को उस गिरगिट के बारे में सब पता चलेगा, जो व्यक्ति लंबा समय परम धाम में बैठेगा उसी को पता चलेगा परम धाम में है क्या, कैसे परम धाम के कलर है, रंग है, जो भी है। और जो खाली थियरी पढ़ेगा उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि परम धाम का कहीं वर्णन बाबा ने ऐसा किया हुआ नहीं है बहुत कुछ ज्यादा, थोड़ा थोड़ा आता है, बीच में नाम आते हैं, याद करो घर को याद करो आता है, परंतु वहां क्या है और कैसा है ये परम धाम, और इतना डिस्टेंस कितना है, किसी ने प्रश्न पूछा था सूरज भाई से, परम धाम और धरती का अंतर बताओ आपने जो गया अभी तक पहुंचा ही जानवरों का परम धाम कहां है, हाथी बैल कहां है, यही होगा बाजू में कहीं, इसके नीचे अलग अलग सेक्शंस। तो ये सारी चीजें ऐसी है, इसका कोई बेतुक, इसका कोई ज्यादा उत्तर देने का कुछ मतलब नहीं, वहां जाओ वहां बैठो झाड़ के पास, तो अपने आप पता चलेगा आत्मा कैसे उतरती है, कैसे जाती है, और क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे होम स्वीट होम की, जहां हमको वापस अब जाना है, इसके लिए इस घर को याद करना है, तो यहां की व्यक्त बातें व्यक्त चीजों से परे उठना होगा। ओम शांति।